ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की बड़ी संख्या में पहचान की गई है।
डोर टू डोर वेरिफिकेशन में बीएलओज को पता चला है कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के इन व्यक्तियों ने आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। बिहार में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर अभियान चल रहा है। इसका उद्देश्य वैध दस्तावेज वाले केवल भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। सूत्रों ने बताया कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक उचित जाँच के बाद यदि यह सत्य पाया गया तो ऐसे बाहरी लोगों के नामों को इस वर्ष 30 सितम्बर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
राज्य में अब तक 80% से अधिक मतदाता अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ गई है।
जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहां और इंडस्ट्रीज भी आएं ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो।
रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज बेहतर कानून और व्यवस्था के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा में भुवनेश्वर और कटक के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू रावेन शाह विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और कटक स्थित रावेन शाह गर्ल्स हाई स्कूल के 3 भवनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगी। वे आदिकवि सरला दास की जयंती समारोह में भी भाग लेंगी और कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नकली और खराब गुणवत्ता वाले उर्वरकों के मुद्दे पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। ये पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भेजा गया है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सही समय पर और उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना आवश्यक है। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत का एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली बन गई है। यूपीआई के जरिए प्रतिदिन 65 करोड़ लेनदेन किया जा रहा है और ये वीजा को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। इसे अभूतपूर्व बताते हुए श्री अमिताभ कांत ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। इसने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि ये 2028-29 तक 20 देशों में यूपीआई का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। लंदन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 3रे टेस्ट मैच में 4थे दिन के खेल की समाप्ति पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। भारत को लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के लिए अभी 135 रन की जरूरत है। 4थे दिन की आखिरी गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नाइट वॉचमैन आकाशदीप को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। इससे पहले इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 192 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट जबकि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। केएल राहुल नाबाद 33 रन बनाकर क्रीज पर हैं। वह आज टेस्ट मैच के अंतिम दिन एक नई बल्लेबाज के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।